ओम शांति। आज हम सभी संतुष्टता की तरफ अपना ध्यान खींचेंगे। संतुष्टता एक गुण भी है और संतुष्टता एक शक्ति भी है। ते संतुष्ट आत्मा अपने जीवन में अचल, अडोल और साक्षी होकर रहती है और जीवन में संतुष्टता का आधार सर्व प्राप्ति है। जिसको सर्व प्राप्तियां हैं वो सदा संतुष्ट रहते ही हैं। तो हमें सर्व प्राप्तियां एक बाप दादा से प्राप्त है और संतुष्टता का आधार संपत्ति और संबंध। आज देखेंगे कि दुनिया में हम संबंधों में भी बहुत असंतुष्टता है। ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा संबंधी मिलता तो अच्छा था, ऐसा बच्चा मिलता था तो अच्छा रहता था, ऐसा असंतुष्टता संबंधों में भी है और संपत्ति में भी है। कोई चीज की कमी होती है तो ये चीज हमारे पास नहीं है, ये चीज चाहिए। तो संतुष्टता का आधार सर्व प्राप्ति, संबंध और संपत्ति। और जब हमें बाबा मिल जाते हैं तो संबंधों में भी संतुष्टता आ जाती है और संपत्ति में भी संतुष्टता आ जाती है। जो कुछ मिलता है हम उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। ये देन हमें प्रभु देन है। जब परमात्मा की प्राप्ति होती है तो हर परिस्थिति में हमको जो भी मिलता है, जो भी मान सम्मान मिला, जो भी प्राप्तियां हमें जीवन में मिले, जो भी संबंध मिले, सबसे हम संतुष्ट रहते हैं। क्योंकि बाबा जो हमको अपने जीवन में जो कुछ कमियां हैं वहां वो पूर्ति कर देता है। संबंधों में जब हम सर्व संबंध बाबा से जुट जाते हैं तो कोई संबंधों में भी असंतुष्टता नहीं रहती। असंतुष्टता जब बढ़ जाती है तो संबंधों में मन मुटाव बढ़ता जाता है, लेकिन संबंधों में जब संतुष्टता होती है तो संबंधों में मन मुटाव नहीं होता, हम सबसे संतुष्ट रहते हैं। और संतुष्ट आत्मा स्वयं को भी प्रिय है, सर्व को भी प्रिय है और बाप को भी प्रिय है। और संतुष्ट आत्मा बाबा के समीप रहती है। और योग के लिए भी हमें संतुष्टता की बहुत आवश्यकता है। हम जितना संतुष्ट रहते हैं उतना हम योग में एकाग्रता का अनुभव ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तो हमें संतुष्टता की शक्ति को रोज रोज बढ़ाना है। संतुष्टता की शक्ति बढ़ने का आधार स्वमान में रहना। स्वमान में रहने से हम संतुष्ट रह सकते हैं। स्वमान हमें संतुष्ट रखता है क्योंकि बाबा कहते हैं कि अपमान की फीलिंग कहीं भी आती है वहां हमें असंतुष्टता नहीं होनी चाहिए। वहां हमें ये स्वमान याद रखना है कि स्वयं परमात्मा ने हमें सम्मान दिया है, स्वमान दिया है और सम्मान दिया है। अगर कोई आत्मा के द्वारा हमारा अपमान होता भी है तो हमें याद रखना है कि हमें परमात्मा ने जो सम्मान दिया है अविनाशी सम्मान दिया है, कोई विनाशी सम्मान नहीं दिया है। तो अल्पकाल के अपमान में हमें असंतुष्टता की फीलिंग कभी नहीं आनी चाहिए। इसलिए हमें संतुष्ट सदा रहना है तो स्वमान में रहना आवश्यक है। समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से भी हम अपने स्वमान में मन को टिका सकते हैं। जितना जितना हम स्वमान में रहते हैं उतना उतना संतुष्ट रहते हैं। संतुष्टता एक आंतरिक चीज है और खुशी बाहरी चीज है। संतुष्टता अंदर से आती है और हम जहां जहां संतुष्ट रहते हैं तो जो हमें प्राप्ति नहीं है वो प्राप्तियां आ जाती हैं। जहां हम असंतुष्ट होते हैं तो जो मिली हुई प्राप्ति है वो भी हमसे दूर हो जाती है। इसीलिए संतुष्ट रहना बहुत आवश्यक है और संतुष्टता की शक्ति जिनके अंदर होती है तो सर्व शक्तियां उनके अधिकार में रहती हैं। वो जो भी शक्ति को अधिकारी रूप में आह्वान करते हैं उसी समय वो शक्तियां उनको सहयोग देने के लिए आ जाती हैं। तो इसीलिए संतुष्टता की शक्ति हमें सदा कायम रखना है। जिसके अंदर संतुष्टता की शक्ति होती है वो हर परिस्थिति में अचल अडोल रहते हैं। कोई भी परिस्थिति उन्हें हिला नहीं सकती, कोई भी परिस्थिति उन्हें ऐसे लगेगी जैसे पपेट शो चल रहा है। पपेट शो जैसे आजकल बच्चे सभी पसंद करते हैं, कार्टून फिल्म बहुत पसंद करते हैं, वो रियल नहीं होता है। पपेट शो या कार्टून शो वो स्टोरी होती है लेकिन रियल नहीं होता। हमारे सामने जो भी परिस्थितियां हैं वो भी रियल नहीं है, वो सिर्फ हमें अपनी शक्तियों की पहचान देने के लिए वो परिस्थितियां आती हैं कि आपके अंदर ये गुण की कमी है, इस परसेंटेज में आपके अंदर इस शक्ति की कमी है, वो बताने के लिए हमें परिस्थितियां आती है, बाकी वो कोई रियल नहीं है। जैसे कार्टून शो चलता है, परिस्थितियां संतुष्टता की शक्ति वाले को हिला नहीं सकती। और दूसरी बात, संतुष्टता की शक्ति जिसमें रहती हो वो साक्षी स्थिति में जरूर रहेगा। कोई भी परिस्थिति आती है तो साक्षी स्थिति में रहने के कारण उस परिस्थिति का प्रभाव संतुष्ट आत्मा के ऊपर नहीं पड़ता, परिस्थिति स्वस्थिति में बदल जाती है और परिस्थिति उन्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। इसलिए संतुष्ट आत्मा सदा स्वमान में रहती है, साक्षी रहती है और संतुष्ट आत्मा के मन के अंदर हमेशा तीन बिंदियां लगी रहती हैं। इसीलिए वो सदा संतुष्ट रहते हैं। एक है आत्मा, दूसरी पर बाबा, बाबा बिंदी, आत्मा बिंदी और ड्रामा बिंदी। तीन बिंदियां होने के कारण वो आत्मा सदा संतुष्ट रहती है और सदा संतुष्टता की शक्ति उनके जीवन के अंदर हाजिर रहती है। इसीलिए हमें सदा यह अभ्यास करना है हर बात में तीन बिंदियां लगाने का, क्योंकि हमारे संपत्ति को बढ़ाने का आधार, कमाई को बढ़ाने का आधार भी तीन बिंदी है। बाबा भी कहते एक के बाजू में हम एक बिंदी लगाते हैं तो 10 हो जाता है, एक और बिंदी लगाओ तो 100 हो जाता है, एक और बिंदी लगाओ तो 1000, एक बिंदी लगाओ तो हम तो एक साथ तीन बिंदी लगा सकते हैं। एक बाबा, उसके बाद मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, फिर तीन बिंदु, ऐसा एक साथ हम लोग तीन तीन बिंदी बढ़ाते जाते हैं तो हमारी कमाई बढ़ती जाती है। इसलिए बाबा कहते संतुष्ट आत्मा हमेशा संतुष्ट इसीलिए रहती है कि वो अपने मन के अंदर सदा तीन बिंदी लगाती है। तीन बिंदी का तिलक उन्हें सदा लगा हुआ रहता है, उनको बिंदी रोज लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो तीन बिंदियां मन में हमेशा लगा करके रखती हैं। और उसके बाद बाबा कहते हैं कि पुरानी बात न भूलने के कारण भी कई जगह हम असंतुष्ट हो जाते हैं। कभी कभी कोई परिस्थिति नहीं होती असंतुष्टता की, फिर भी हम असंतुष्ट हो जाते हैं, कारण व्यर्थ संकल्प या अनुमान। कोई ना कोई चीज का किसी ना किसी के ऊपर हम अनुमान लगाते, उन्होंने ऐसा किया होगा, इन्होंने ऐसा किया होगा, वो अनुमान असंतुष्टता को पैदा करता है। लेकिन संतुष्ट आत्मा निश्चय बुद्धि होती है, अनुमान का कोई उनके अंदर प्रभाव नहीं रहता, किसी के ऊपर भी उनको संशय या अनुमान उनको नहीं होता। वो हम हर एक के ऊपर विश्वास रखते हैं और खुद भी विश्वास पात्र रहते हैं, क्योंकि आजकल हम लोग कईयों के ऊपर विश्वास नहीं होता कि इन्होंने ऐसा किया है ऐसा किया है, लेकिन बाबा कहते कोई भी कुछ भी करता हो उसमें आपका कल्याण ही है, उसमें आपका अकल्याण है ही नहीं। संतुष्टता के लिए जैसे तीन बिंदी लगाना जरूरी है, ऐसे ही संतुष्टता के लिए हमें ये बात याद रखना जरूरी है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। इन बातों को भी याद रखना बहुत जरूरी है। तीन बिंदी के साथ जो भी होगा उसमें हमारा कल्याण है, हमारा अच्छा होगा, उन बातों के ऊपर हमारा पूरा निश्चय होना आवश्यक है, तभी हम संतुष्ट रह सकते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी संतुष्टता को समाप्त करती है। और जब हम पॉजिटिविटी हमेशा अपने जीवन में उसको लाते हैं, उस आधार से हम सदा संतुष्ट रह सकते हैं। इसीलिए संतुष्ट रहने के लिए तीन बिंदियों का लगाना भी जरूरी है, और जो होता है उसमें कल्याण है, इस बात को भी याद रखने से हम संतुष्ट रह सकते हैं। और संतुष्टता अनेक गुणों का आह्वान करती है, संतुष्टता अनेक शक्तियों का भी आह्वान करती है। जैसे जैसे समस्या वैसे वैसे शक्ति आती है, हमें उसमें विजयी बनने में सहयोग देती है। संतुष्टता की शक्ति सर्व गुणों को हाजिर रखती है, सर्व शक्तियों को भी हाजिर रखती है, और हमारे संतुष्टता का आधार सर्व प्राप्तियां और अविनाशी प्राप्तियां और अविनाशी संबंध। तो बाबा अविनाशी हैं, माना हमारे सर्व संबंध अविनाशी हैं, और बाबा से जो भी प्राप्तियां हुई हैं वो भी अविनाशी। हम देखते हैं कि विनाशी प्राप्तियों में जब हलचल हो जाती है तो संतुष्टता भी डगमग होती है। इसीलिए बाबा ने हम सब बच्चों को संगम युग में अविनाशी प्राप्तियां कराई हैं, अविनाशी सम्मान दिया है, अविनाशी स्वमान दिया है, और परमात्मा से हमारे अविनाशी संबंध जुड़े हुए हैं। क्योंकि दुनिया में आप देखेंगे कि जिस संबंध को हम आधार बना लेते हैं वो थोड़े समय के बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो हमारे अंदर असंतुष्टता आ जाएगी, क्योंकि हमने उनके ऊपर आधार रखा। इसलिए हमारे जो संबंध है सर्व संबंध बाबा के साथ है और अविनाशी संबंध है। इसीलिए बाबा कहते हैं मेरे से आप संबंध जोड़ेंगे तो जिस समय जिस प्राप्ति की आवश्यकता होती है उसी समय मैं आपको प्राप्ति करा देता हूँ, और संबंधों का अनुभव भी करा देता हूँ। लौकिक संबंध भी कई बार वो लोग गारंटी करते हैं मैं आपको समय पर साथ दूंगा, लेकिन समय पर वो नहीं दे सकते, कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि विनाशी संबंध है। कहीं बाबा ने जो हमको बताया है कि आपके साथ मेरे अविनाशी संबंध है, आप मेरे से संबंध जोड़ो तो मैं गारंटी निभाऊंगा, जो निभाने का काम बाबा अभी जो कर रहे हैं हम सबके जीवन में उसका अनुभव है। जैसे बाप का संबंध, बच्चे का संबंध, भाई का संबंध, सखा का संबंध, समय अनुसार हम जो भी संबंध बाबा से जोड़ते हैं उसी समय अनुसार बाबा हमको वो संबंध निभाने में हाजिर हो जाते हैं, कोई देहधारी हो या ना हो। इसीलिए बाबा कहते आप लोग मेरे से संबंध नहीं निभाते, लेकिन मैं तो आपके साथ संबंध जरूर निभाऊंगा। समय पर बाबा जरूर अपनी जो भी बाबा ने प्रतिज्ञा की है, हमारे से वायदा किया है, वो तो पूरा करते हैं, लेकिन हम सभी को भी अपना वायदा पूरा करना है। कहाँ तक हम अपना वायदा पूरा करते हैं इस बात पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हम भी बाबा से बहुत वायदे करते हैं लेकिन समय पर वायदे भूल जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आपने जो भी वायदे किए हैं रिवाइज करो अमृत वेले, मैंने बाबा से क्या क्या वायदा किया और कौन सा वायदा कहाँ तक मैं निभा रहा हूँ, कहाँ तक निभा रही हूँ। क्योंकि वायदे को भूलने से हम जो फायदा उठाना चाहिए वो हम लोग उसका फायदा नहीं उठा सकते, इसीलिए वायदे को याद रखना भी बहुत जरूरी है। तो संतुष्ट आत्मा बनने के लिए हम अपनी दिनचर्या पर पूरा ध्यान रखें, कहाँ कहाँ हम असंतुष्ट हो जाते हैं या कहाँ कहाँ किसी को असंतुष्ट करते हैं, क्योंकि बहुत जगह पर हम खुद भी असंतुष्ट हो जाते हैं। हम जितना चाहते हैं उतना हमको नहीं मिलता है तो भी हम असंतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारी अविनाशी प्राप्तियों को सामने रखते हैं तो हमको कभी असंतुष्टता नहीं आ सकती। हमें अल्पकाल की तरफ ध्यान नहीं देना है, जो अविनाशी प्राप्तियां हैं। कई बार विनाशी प्राप्तियों के पीछे हम अविनाशी प्राप्तियों को गवा देते हैं, लेकिन हमें जो अविनाशी प्राप्तियां मिली है उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो हमें कभी भी अपमान की फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि बाबा ने जो हमें सम्मान दिया है अविनाशी सम्मान दिया है। बाबा कहते हैं कि कई बार कईयों को ये संकल्प आता है कि मुझे आगे नहीं किया इसीलिए असंतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा सबके आगे आपको रखा है, सबसे आगे आप लोग हैं। अभी भी यहाँ भी जो 80वां एनिवर्सरी मनाई गई थी, सब लोग किसकी महिमा कर रहे थे? शिव बाबा की किसी ने महिमा की? सब कुछ कराने वाला करण करानहार शिव बाबा है, लेकिन वो लोग महिमा कर रहे थे किसकी? ब्रह्मा कुमारियों की। तो सारे विश्व के अंदर जो भी काम कार्य चल रहा है और कार्य में सफलता जो मिल रही है, उस सफलता का आधार बाप दादा अव्यक्त रूप में हम सबको सफलता दे रहे हैं, लेकिन नाम किसका हो रहा है? बच्चों का। इसलिए बाबा कहते हैं दुनिया में सबसे आगे आपको रखा है, इसीलिए आपको असंतुष्ट होने की आवश्यकता ही नहीं है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी माना हम सभी उसमें समाये हुए हैं, है ना? हम सब ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारिया, इसीलिए हम सबको जो अविनाशी प्राप्ति कराने वाला बाबा मिला है उनको प्रत्यक्ष करना है, तो अविनाशी स्वमान में रहना जरूरी है, अविनाशी प्राप्तियों में लीन रहना जरूरी है। जो हमें अविनाशी प्राप्तियां मिली हुई है, कभी कभी बाबा कहते हैं आपको क्या क्या मिला है बहुत बड़ी लिस्ट बनाओ, क्योंकि कई बार जो मिला है हम उसको भूल जाते हैं, जो नहीं मिला उसको ज्यादा याद करते हैं। हमको मिला ज्यादा है, जो अप्राप्ति है वो बहुत कम है, प्राप्तियां ही ज्यादा है, लेकिन हम याद करते एक दो चीज को जो हमें नहीं मिली है, लेकिन बाबा कहते जो मिला है उसको याद रखो, उसकी लिस्ट बनाओ। प्राप्तियां ही आपके जीवन में ज्यादा है। जब हम सभी प्राप्तियों को याद करते हैं एक एक को, डिटेल में नहीं, बाबा मिला सब कुछ मिला वो डिटेल है, लेकिन हमको विस्तार में याद रखना है बाबा से हमको क्या क्या मिला है, बाबा हमें क्या क्या दे रहे हैं, कितने सुख हमको बाबा से मिले हैं, कितने दुखों से बाबा ने छुड़ाया है, कितने बंधनों से बाबा ने छुड़ाया है, कितने जगह हम बचाया है, कितनी जगह हम असुरक्षा का अनुभव करते थे लेकिन बाबा ने सेफ किया है, कहाँ कहाँ सेफ किया है, ये विस्तार में हमें मनन करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम कई बार बाबा मिला सब कुछ मिला यही एक ही संकल्प हम रखते हैं, इसलिए जल्दी से हमारा योग टूट जाता है। तो हमें मनन चिंतन करने की जब आदत पड़ जाती है तब इन चीजों को हम विस्तार में जब सोचते हैं वही मनन चिंतन है। तो इसीलिए हमको जो जो भी प्राप्तियां हुई हैं संगम पर, दुनिया के हिसाब से हमको एक एक चीज को याद करना है, क्या क्या मिला है बाबा से हमको, कितना सुख मिला है जो दुनिया में किसी को भी नहीं मिला है, और कितने ऊंचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। लौकिक में कई बार सोचते थे दुनिया में सबसे ऊंची पढ़ाई हमको पढ़नी है, वही पढ़ाई बाबा अभी हमको पढ़ा रहे हैं। दुनिया में सबसे ऊंची पढ़ाई है, शिव बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वही पढ़ाई सबसे ऊंची है। सबसे ऊंचा ज्ञान यही है जो कोई भी शास्त्रों में नहीं है, कोई मनुष्य आत्मा नहीं दे सकती। इन बातों को ऐसा हम डिटेल से हम विस्तार से सोचते हैं तो हमें प्राप्तियां सब याद आ जाती हैं, तो अप्राप्ति भूल जाते हैं। जब हम अप्राप्त जो चीज को हम भूल जाते हैं वो हमको मिल जाती है। जब हम उसको ये नहीं मिला ये नहीं मिला हम याद करते हैं तो हमको असंतुष्ट करती रहती है। इसलिए जो मिला है उसको ही हमें याद करना है। दुनिया में भी कहते हैं जो जिसको मिला है उसमें जो संतुष्ट रहता है, जो नहीं है वो भी चीजें आ जाती हैं। कईयों को जो है उसको यूज नहीं करते और उसकी खुशी उनको नहीं है, तो और भी जो रही हुई मिली हुई चीजें वो भी गुम हो जाती हैं। इसलिए संतुष्ट आत्मा बनने के लिए भी हमें संतुष्टता की शक्ति को कायम रखने के लिए हमें अपनी प्राप्तियों को याद रखना है, क्योंकि सर्व प्राप्तियों का आधार संतुष्टता है। जहां जहां अप्राप्ति है वहां असंतुष्टता है। तो हमें ये अपने आप में चेक करना जरूरी है जो हमारे जीवन में अप्राप्ति है उसका कारण क्या है, उसके ढूंढना पड़ेगा कोई कौन सी कमी के कारण मेरे अंदर ये प्राप्ति नहीं है। क्योंकि कई बार हम लोग अपने आप को सेवा में इतना बिजी रखते हैं, इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते। लेकिन अभी हम सभी सेवा में बिजी हैं, वो तो ठीक है, लेकिन बाबा कहते थोड़े समय के बाद ये वाचा की सेवा जब बंद हो जाएगी तो आप क्या करेंगे। उस समय हम अभी से ही जब मनन करने की आदत हो जाती है और सर्व प्राप्तियां याद करते हैं, बाबा को याद करते हैं, सर्व शक्तियां अपने अंदर जमा करते हैं, तो इसमें जिसको बिजी रहने की आदत होगी वही अपने आप को बिजी रख सकते हैं। क्योंकि हम बाहरी सेवा में अभी ज्यादा बिजी हैं और जो अपनी आंतरिक सेवा होनी चाहिए वो हम सब कम कर रहे हैं। इसीलिए आंतरिक स्टेज को बनाना बहुत जरूरी है, हमारा उसके ऊपर ध्यान बहुत कम है। उनसे मिलना है, इनसे मिलना है, उस VIP को इस कॉन्फ्रेंस में लेके आना है, इस बात के ऊपर हमारा ध्यान बहुत जाता है। लेकिन अपनी इन शक्तियों को अपने अंदर भरना है, संतुष्टता की शक्ति को भरना है, बाबा से सर्व अनुभूतियां करनी है, सर्व संबंधों का रस लेना है, इसके ऊपर भी हमें बहुत बहुत ध्यान देना जरूरी है। संतुष्टता की शक्ति भी ये आंतरिक शक्ति है। हम कहां कहां असंतुष्ट होते हैं, किस कारण होते हैं, तो हमें अपने आप की स्थिति के लिए भी गहराई में जाना बहुत जरूरी है। तो हम सभी अभी योग की गहराई, ज्ञान की गहराई, गुणों की गहराई, शक्तियों की गहराइयों का अनुभव करना हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि संगम युग का समय बहुत थोड़ा है और हमें जो अनुभूति करनी है वो बहुत सागर है, तो सागर को एकदम अनुभव में लाना है तो हमें अपने समय को बहुत बचाना पड़ेगा। एक एक सेकंड में हमें अपने आप को अंदर में लेके जाना है। जैसे हम दुनिया में सबको कहते हैं योग माना अंतर जगत की यात्रा, लेकिन हम कहां तक अंदर जगत को भरपूर करने में लगे हुए हैं, इस बात का ध्यान भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमको बाबा मिला, सबको बाबा का परिचय देना है, ये सबकी लगन अच्छी है, लेकिन बाबा हमको मिला, हमने बाबा से क्या क्या लिया, कितना हम बाबा को यूज कर रहे हैं, उसको भी हमें देखने की आवश्यकता है। दूसरों को देना है ये हमको ज्यादा ध्यान रहता है, हमको बाबा से सब कुछ लेना है इसका ध्यान कम रहता है। इसीलिए बाबा कहते हैं आप सेवा के सब्जेक्ट में आगे जा रहे हैं और बाकी तीन सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा नंबर वार है, इसीलिए वो तीन सब्जेक्ट्स को भी सेवा के सब्जेक्ट के साथ मिलाना बहुत जरूरी है। आंतरिक शक्तियों को भरना है, कौन सी शक्तियों की कमी है, क्योंकि कहाँ कहाँ कई शक्तियां हमारे अंदर है लेकिन परसेंटेज में है। जैसे सहन शक्ति है, कहाँ कहाँ हम सहन करते हैं, कहाँ कहाँ सहन नहीं कर सकते, क्यों है, सहन शक्ति है लेकिन परसेंटेज में है। ऐसे शक्तियों को हमें चेक करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बाबा कहते थोड़े समय में आपके पास बहुत बड़ी क्यू लगने वाली है, तो आप उनको क्या देंगे, ज्ञान सुनाएंगे तो हम लोग वो ज्ञान सुनने का इतना उनको ये नहीं रहेगा, इतना धीरज नहीं है, आप 7 दिन का कोर्स करो वो नहीं कर सकते। उनको एकदम उसी समय शांति की अनुभूति, सुख की अनुभूति, उनको जो चाहिए उसी समय हमें अनुभूति कराने की आवश्यकता पड़ेगी। बाबा कहते जैसे उनके अंदर ताकत नहीं रहेगी कि अभी हम लोग कई लोग डिप्रेशन से आते रहते हैं, थोड़ा बहुत शांति का अनुभव उनको होता है और हम उनको बताते हैं कि स्वमान का अभ्यास करो, ये करो, अभी तो थोड़ा बहुत कर सक रहे हैं, लेकिन बाद में आने वाली आत्माएं तो इतनी कमजोर रहेगी जो अभ्यास भी नहीं कर सकेगी। हमें अपनी प्राप्तियों से ही उनको भरपूर करना पड़ेगा, इसीलिए हमको अपनी स्थिति बनाने में बहुत अटेंशन रखना है, क्योंकि जो अपनी स्थिति बना लेते हैं उनकी स्थिति से सेवा होगी लास्ट में। इसीलिए सेवा के साथ स्व उन्नति का भी ध्यान रखना है। इसलिए बाबा हमको कहते हैं कि याद का भी बैलेंस रखो और सेवा का भी बैलेंस रखो। अगर एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है तो भी हमें कई बार परिस्थितियों का सामना करने में सफलता नहीं मिल सकती। आंतरिक शक्तियां जितनी जितनी हम अपने अंदर भरते जाते हैं उतना हम परिस्थितियों को सहज रीति से पार कर सकते हैं। तो अभी कई बार हमें परिस्थितियां लगती है कि ये हमें परिस्थिति है, लेकिन जब हम संतुष्टता की शक्ति को भरपूर कर देते हैं तो ऐसा लगेगा नहीं कि ये परिस्थिति आई है, वो आएगी और जाएगी। बाबा कहते हैं संतुष्ट आत्मा को परिस्थितियां खेल लगती हैं, कई बार खेल लगती है, अभी वर्तमान हमारी स्थिति कई बार खेल लगती है, कई बार बोझ सा अनुभव होता है, क्योंकि संतुष्टता है हमारे अंदर लेकिन संतुष्टता की शक्ति, संतुष्टता के गुण को शक्ति के रूप में परिवर्तन करना है। जैसे शांति गुण भी है और शक्ति भी है, ऐसे ही संतुष्टता के गुण को शक्ति में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। तो जितना जितना हम ये जो संतुष्टता का गुण और संतुष्टता की शक्ति अपने अंदर बढ़ती रहती है उतना उतना हम अनेक आत्माओं को बाबा की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कई बार कि आप लोगों को लोग पूछने आएंगे कि आप इतना खुश कैसे रहते हैं, आपको भी बहुत परिस्थितियां आती हैं, आप कैसे उसका सामना करते हो, पूछने के लिए आएंगे आपके पास, तो क्या जवाब देंगे, यही बताएंगे ना हम कि परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वरीय प्राप्ति, ईश्वर स्वयं हमें सर्व शक्तियां दे रहे हैं, इसलिए हम हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। हम सभी का अनुभव है हर परिस्थिति में जैसे बाबा एक्स्ट्रा मदद दे करके हमको पार करते हैं, बड़ी बड़ी परिस्थितियां भी हम सहज रीति पार करते जा रहे हैं, उसका कारण बाबा का साथ। जो संतुष्ट आत्मा होती है वो साक्षी रहते हैं, इसीलिए उनके साथ बाबा रहता है, जो साक्षी रहते हैं उनके साथ बाबा रहता है। बाबा ने कहा है साक्षी और साथी, साक्षी होकर रखो रहो तो बाबा आपका साथी बन जाएगा। तो हम सबको अपने अंदर साक्षी स्थिति का अभ्यास बढ़ाना है, हर एक आत्मा के पार्ट को भी साक्षी होकर देखना है। क्योंकि कई बार हम अच्छी तरह से किसी के पाठ को नहीं समझते हैं तो भी असंतुष्टता आ सकती है। इसीलिए हर एक आत्मा के पाठ को भी जानना जरूरी है। कई बार विघ्न रूप बनती है वो आत्मा, तो हम क्या समझते हैं कि ये आत्मा विघ्न रूप बन रही है, लेकिन उसका पाठ है विघ्न रूप बनने का, और हमारा पाठ क्या है? निर्विघ्न रहने का। हमें अपनी स्थिति को नहीं भूलना है। उनका पाठ है विघ्नों को क्रिएट करना और हमारा पाठ है विघ्नों को समाप्त करना। जब हमारे अंदर संतुष्टता की शक्ति आती है तो हम विघ्नों को सहज रीति पार कर देते हैं और उस आत्मा को भी आगे बढ़ने के लिए सहयोग दे देते हैं, क्योंकि हम अपने आप को निर्विघ्न स्थिति में रखते हैं तो जो विघ्न रूप बनता है उनको भी हम निर्विघ्न बना देते हैं। क्योंकि बाबा कहते संतुष्ट आत्मा का जो वायुमंडल है वो अनेक आत्माओं को शक्तिशाली बनाता है। इसीलिए हम अपने अंदर आंतरिक शक्तियों को बढ़ाना बहुत बहुत आवश्यक है। तो अभी है शक्तियां नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन संपन्नता जिसको बाबा कहते हैं वो संपन्नता में लाना है, हर शक्ति को संपन्न बनाना है। इसीलिए हम सभी को संतुष्टता का गुण धारण करने के लिए एक तो स्वमान में रहना है, सम्मान देना है, और संतुष्ट आत्मा सदा झुकती है, क्योंकि हम सभी को इन सब बातों के साथ झुकना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बाबा कहते आप अगर एक जन्म में झुकेंगे तो 21 जन्म दो आधा कल्प आपके सामने सब सिर झुकाएंगे। तभी कई बार हमको झुकना ऐसा लगता है जैसे कि हम अपने आप को कम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। झुकना माना अपने आप को कम करना नहीं है, झुकना माना अपने आप को ऊंचा उठाना। झुकने का जो गुण है वही मनुष्यों को देवता और ब्राह्मण को फरिश्ता बनाता है। अभिमान जिसमें होता है फरिश्ता भी शैतान बन जाता है, और झुकने का जो गुण है वो मनुष्यों को फरिश्ता, फरिश्ते को देवता बनाता है। झुकना माना अभिमान को समाप्त करना। और जब हम आगे बढ़ते जाते हैं ज्ञान में तो अभिमान आने का चांस है। वैसे भी कहते हैं भक्तों को अभिमान नहीं आता, ज्ञानी को जल्दी से अभिमान आ जाता है। थोड़ा सा भी हम लोग सेवा में सफलता की प्राप्ति या कुछ सेवा में आगे बढ़ते हैं तो बस मैंने ये किया ऐसा अभिमान आ जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं अभिमान को आने का चांस नहीं देना, क्योंकि ज्ञानी के अंदर आने का चांस है अभिमान को। और जहां अभिमान आता है वहां कई गुण समाप्त हो जाते हैं और हमारे कमाई में घाटा शुरू हो जाता है। इसीलिए हमारी कमाई में घाटा नहीं पड़ना चाहिए, रोज हमारी कमाई बढ़नी चाहिए। इस बीच में बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा था आप सबसे बड़े व्यापारी हैं। क्यों? व्यापारी हमेशा कमाई को बढ़ाते हैं, वो हमेशा यही सोचेंगे अभी इस बार इतनी कमाई है हुई है, अभी अगली बार इतनी कमाई होनी चाहिए और इतनी होनी चाहिए, बहुत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उनको हमेशा कमाई को बढ़ाने का ख्याल रहता है। तो बाबा ने कहा आप सबसे बड़े व्यापारी हैं, क्योंकि आपको भी कमाई का ध्यान है। कमाई के समय क्या होता है, जब लोग कमाई करते हैं सीजन होती है तो एक नींद का त्याग अपने आप हो जाता है, वो करते नहीं है, अपने आप उनको नींद नहीं आती, भूख भी नहीं लगती, क्योंकि कमाई हो रही है। तो बाबा भी कहते हैं आप भी संगम पर कमाई में बिजी रहो तो आपको भी नींद भी नहीं आएगी। और क्योंकि वो लोग जो कमाई होती वो गिनती करते जाते हैं तो उनको नींद नहीं आती, इतनी कमाई हो रही है, इतनी कमाई हो रही है, ऐसा। अब बाबा कहते हैं आपको भी 5000 वर्ष बैठ करके खाना है, इतनी कमाई करनी है। तो अभी तक हमने जो कमाई की है वो कितने हजार साल चलेगी, हमें उसको ध्यान में रखना जरूरी है। हमें 5000 वर्ष तक कमाई यहाँ ही करनी है, क्योंकि जो कमाई का स्रोत है वो संगम युग पर ही है। बाबा जब तक है तब तक कमाई है, और जब सतयुग शुरू हो जाएगा तो कमाई है सतयुग में नहीं है, क्योंकि हम जो कमाते हैं वो खाते हैं। हमारा जो बैंक का खाता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि प्रारब्ध शुरू हो जाती है। तो जो कमाई का समय है वो संगम युग है, यहाँ एक ही समय पर हमारी कमाई होती है। तो हम जितना भी 5000 वर्ष के लिए जितना भी कमाई करनी है वो यहाँ ही हमको करनी है, और कोई स्थान पर कोई युग में ऐसा चांस नहीं मिलता, क्योंकि हमको अभी बाबा मिला है। तो जहाँ बाबा मिला है वहाँ कमाई ही कमाई है, और बाबा की याद है तो कमाई है। जब बाबा की याद भूल जाते हैं तो कमाई नहीं होती। इसीलिए हमको अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा अटेंशन देना है, और जो इस समय हमें कमाई का जो आधार है वो संकल्प है। तो हम अपने संकल्पों को, समय को जितना बचाते हैं उतना हम कमाई ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि संकल्पों के द्वारा ही हमारी कमाई थोड़ा कम हो जाती है, थोड़ा थोड़ा माइनस कहाँ कहाँ हो जाती है, क्योंकि ज्यादा सोचने से। लेकिन बाबा कहते हैं आपकी बाबा की याद में कमाई बढ़ती जाती है। इसीलिए संगम युग पर संकल्पों के खजाने के ऊपर भी बहुत ध्यान देना आवश्यक है। संकल्प और समय, ये दो खजाने बहुत वैल्यूबल है। अभी संगम युग का समय रहा ही बहुत कम है, बहुत सारा चला गया है। संगम युग का जो वैल्यूबल समय है थोड़े में थोड़ा रह गया है, जिसमें हमको एक सेकंड भी, एक श्वास भी वेस्ट नहीं करना है। तो जब हम हर संकल्प के ऊपर, हर सेकंड के ऊपर जितना ध्यान रखते हैं उतना हमारा समय वैल्यूबल होता जाता है, और हमारे अंदर वैल्यूज बढ़ते जाते हैं। समय को जो वैल्यू देते हैं, संकल्पों को जो वैल्यू देते हैं, वो खुद ही वैल्यूबल बन जाते हैं। तो संतुष्टता की शक्ति को जमा करने के लिए समय और संकल्प के खजाने को बचाना बहुत जरूरी है। और दुनिया में आप देखिए, धन खर्च जहां होता है वहां उसको बचाने में बहुत लोगों का ध्यान रहता है, लेकिन धन से ज्यादा वैल्यूबल समय है, धन से ज्यादा वैल्यूबल हमारे संकल्पों का खजाना है। कहां कहां कुछ नुकसान होता है तो हम उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, उन्होंने ऐसा नुकसान किया, ये हुआ वो हुआ, क्योंकि नुकसान तो हुआ उसके साथ हमारे संकल्पों का भी नुकसान नहीं करना है, क्योंकि वो तो चीज नुकसान हो गई, वो तो मिल सकती है, थोड़ा धन खर्च करने से वापस आ सकती है, लेकिन जो संकल्प का खजाना है वो फिर वापस नहीं आ सकता, और समय का खजाना भी वापस नहीं आ सकता। इसीलिए हमें संकल्प और समय के खजाने को भी बचाना है, और बहुत बहुत इकोनॉमी से खर्च करना है। बाबा कहते संगम युग, जब से आप बाप के बने हो जो भी कमाई आपको हुई है, जितने भी खजाने आपने जमा किए हैं, उन सब खजानों को बहुत इकोनॉमी से खर्च करना है। कहाँ कहाँ हमें शक्तियों को लगाने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ हम शक्तियाँ खर्च कर देते हैं, जैसे कुछ समस्या आ गई, कोई आत्मा हमारे जीवन में विघ्न रूप बनती है, तो हम वो विघ्न रूप जब आत्मा बनती है तो व्यर्थ सोचने की बजाय हमें ये सोचना है ड्रामा में इसका पार्ट है, आप देखेंगे दुनिया में भी कई नाटक बनते हैं, ड्रामा तैयार करते हैं, उसमें किसी को अगर रावण का पोर्शन दिया है, हम उसकी उसके पार्ट को न समझते हुए ये रावण राम का पार्ट बजाए हम सोचेंगे तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पार्ट मिला है रावण का, तो उसी का पार्ट बजाएगा, वो वही पार्ट प्ले उसको करना है क्योंकि उसको वही पोर्शन मिला है। तो इसीलिए हर एक को अपना पार्ट बजाना है, ड्रामा में उस आत्मा का पार्ट है। तो ड्रामा जो शब्द है अनेक शक्तियों को बचाता है, इसीलिए कई परिस्थितियों में ड्रामा को याद रखना बहुत जरूरी है। ड्रामा एक शब्द हमारे सहन शक्ति को भी बचाता है, संकल्पों की शक्ति को भी बचाता है, समय की शक्ति को भी बचाता है, क्योंकि ड्रामा है कल्याणकारी और ये ड्रामा में हुआ, कल्प पहले भी हुआ था और यह भी अभी भी हो रहा है। अपने रमेश भाई हमेशा क्लास में बताते थे, यज्ञ में पहले पहले हापुड़ में बहुत हंगामा चला, उस समय मम्मा एक बार वहां हो करके आई थी, रमेश भाई मधुबन में उस समय आए थे, साकार बाबा को सब बताया मम्मा ने, और जब मम्मा बता रही थी तो अचल स्थिति में रह करके उन वहां की समस्याओं का वर्णन करती थी, हलचल में आकर के नहीं। तो मम्मा से जब ये बाबा से बताते हुए उन्होंने सुना, बाद में उन्होंने बात की रमेश भाई ने मम्मा से, मम्मा आप इतना वहां पर हंगामा हुआ लेकिन आपकी स्थिति कितनी अचल है, कैसे आप अपनी स्थिति को ऐसे अचल रह सकते हैं। तो तब मम्मा ने जवाब दिया, बाबा ने ड्रामा का इतना विस्तार से ज्ञान दिया है, फिर हमें हलचल में आने की क्या आवश्यकता है। तो रमेश भाई बता रहे थे, मम्मा बाबा दोनों को मैंने देखा, उनकी स्थिति में कोई हलचल नहीं थी लेकिन परिस्थिति बहुत हलचल वाली थी। फिर मम्मा भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है और बाबा भी फाउंडर है, तो उनको तो ख्याल चलेगा, अपन सोच सकते हैं, लेकिन दोनों की स्थिति एकदम अचल अडोल थी बता रहे थे। तो ड्रामा एक शब्द हमें अचल स्थिति को और अडोल स्थिति को तैयार कर देता है, वहां हमें शक्तियों को खर्च करने की आवश्यकता नहीं। मम्मा बाबा ने भी अपनी शक्तियों को कैसे जमा किया, कैसे इकोनॉमी से बचाया, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान भी हमें बहुत इकोनॉमी सिखाता है, समय संकल्प श्वास सभी शक्तियों को हम लोग बचा सकते हैं ड्रामा के ज्ञान को याद रखने से। ऐसे कई शब्द ऐसे हैं, कई बातें बाबा के ज्ञान की ऐसी हैं जिसमें हम अपनी शक्तियों का बचाव कर सकते हैं, खर्च होने से हम बचा सकते हैं, हमें अभी बचाने की आवश्यकता है। जैसे बाबा कहते हैं कईयों का बड़ा परिवार होता है तो वो लोग खर्च कैसा करते, इकोनॉमी से खर्चा करेंगे क्योंकि परिवार बड़ा है, इसीलिए हर जगह वो इकोनॉमी से सोचेंगे। बाबा भी कहते कि आपका भी परिवार बहुत बड़ा है ना, कितना बड़ा परिवार है हमारा, सारा विश्व हमारा परिवार है, तो इतने बड़े परिवार को हमें शक्तियां देनी है, शांति देनी है, सुख देना है, हमारी सर्व ईश्वरीय शक्तियों को बांटना है। तो बहुत बड़ा परिवार है, इतने लोगों को बांटना है तो हमें भी इकोनॉमी से चलना बहुत जरूरी है। ये आंतरिक इकोनॉमी, ये जो आत्मिक शक्तियां जो बाबा से मिले हुए खजाने हैं, उन सभी को इकोनॉमी से हमको चलाना है। जितना जितना हम इकोनॉमी से चलेंगे उतना हम अनेक आत्माओं को बांट सकेंगे, क्योंकि कई आत्माएं आपके पास, बाबा कहते हैं थोड़ा ही समय में आप देखेंगे आपके पास बहुत बड़ी क्यू लगने वाली है, तो आप उनको सबको आपको देना पड़ेगा, तो देने के लिए हमें बचाना पड़ेगा। जितना हम स्टोर करते जाते हैं, जमा करते जाते हैं, उतना हम बांट सकेंगे। हमारे सामने कितनी भी बड़ी क्यू लगे, ऐसा ना हो, नो स्टॉक कभी नहीं आना चाहिए बोर्ड। जितनी भी आत्माएं आई उतनों उनको देते जाना है। बाबा कहते वो तब होगा जब आपका कनेक्शन सागर से होगा। शिव बाबा से हमारा जब कनेक्शन होता है तो हम सर्व खजानों को अविनाशी देते रहेंगे, महादानी बन करके दे सकते हैं। जितनी भी आत्माएं आएगी उतना हम दे सकते हैं। हम अकेले नहीं देते, बाबा से लेते जाते और देते जाते, बाबा से लेते जाते हैं और देते जाते हैं। तो हमारा कनेक्शन जब बाबा से रहता है तो हमारे भंडारे सदा भरपूर होते रहेंगे। हम देते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। इसीलिए बाबा कहते आपके पास जो भी खजाने हैं वो इकोनॉमी से चलाओ, क्योंकि आपका भी बहुत बड़ा परिवार है और सभी आत्माओं को कुछ न कुछ देना है, क्योंकि विश्व कल्याणकारी बाप के हम सभी विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं। यहाँ देना ही लेना है, क्योंकि हम बाबा से लेते हैं और बाबा दाता हैं, हम सभी दाता के बच्चे हैं। तो दाता के बच्चों को लेने का संकल्प नहीं करना है, देने का ही सोचना है। और है भी वैसे ही, बाबा के सब बच्चे देना चाहते हैं, कुछ भी लेना नहीं चाहते हैं। हम बहुत सभी बाबा के बच्चों को देखते रहते हैं, वो अपने घरों में रहते हैं या बाहर कहीं भी रहते हैं, तो कुछ भी किसी से लेने की आशा नहीं रखते, देने की ही उनको रहती है। इसीलिए सबको प्रिय लगते हैं। कोई भी बीके किसी के घर में गेस्ट के रूप में जाएगा तो वो खुश होते हैं, क्योंकि ये बीके आएंगे तो हमको सब कुछ सहयोग देंगे, ये लेने वाले नहीं है, ये देने वाले हैं। तो हम सभी दाता के बच्चे हैं और देने वाले हैं। तो हम सभी जितना हम संतुष्ट रहेंगे उतना हम देते जाते हैं। और बाबा कहते हैं आपके संतुष्टता का वायुमंडल अनेक आत्माओं की असंतुष्टता को समाप्त करेगा, क्योंकि हमें ईश्वरीय प्राप्तियां जो मिली हैं, ये ईश्वरीय प्राप्तियां ही संतुष्ट बनाती हैं। हम सभी ये अनुभव करते हैं, जब से ज्ञान में आए हैं तब से हमारे अंदर संतुष्टता आती गई है। हर बात में हम संतुष्ट रहते हैं, कुछ भी हुआ, कुछ जो भी मिला, जैसा भी मिला, हम सभी अपने आप को संतुष्ट अनुभव करते हैं। जो जो संतुष्टता की प्राप्ति है ये हमें परमात्मा की देन है, जो हम सबको मिली है, जिस कारण हम सदा खुश रहते हैं। ये आंतरिक संतुष्टता के कारण हम सदा खुश रहते हैं। तो संतुष्टता की शक्ति को बढ़ाने के लिए तीन बिंदियों को भी याद रखना जरूरी है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ब्रह्मा बिंदी। संतुष्टता का आधार सर्व प्राप्तियां, हमको सर्व प्राप्तियां मिली है। सर्व माना क्या? उन सब बातों को हमें विस्तार से मनन करने से और भी खुशी बढ़ती जाएगी। हमारे जो खुशी का वातावरण, संतुष्टता का वातावरण अनेक आत्माओं को बाबा के समीप ला सकता है। इसीलिए संतुष्ट आत्माएं बाप समान होती हैं और बाप के समीप रहती हैं, और सभी आत्माओं को भी बाबा के समीप लाने का आधार बनती हैं। तो हम सब आत्माओं को अविनाशी प्राप्तियां मिली हैं, अविनाशी संबंध मिले हैं और सर्व प्राप्तियां मिली हैं। तो जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां संतुष्टता होगी ही होगी, संतुष्टता न हो नहीं सकता। इसीलिए हम सबको सर्व प्राप्तियां मिली हैं। उस सर्व प्राप्तियों के हम नशे में जितना जितना रहते हैं उतना उतना हम एकाग्रता का अनुभव करते हैं, और जितना जितना हमारे अंदर एकाग्रता बढ़ेगी उतनी सर्व शक्तियां हमारे अंदर आती रहती हैं। सर्व शक्तियों के प्राप्ति का आधार एकाग्रता। तो बाबा कहते एकाग्रता की शक्ति से दुनिया में भी लोग बहुत कमाल करके दिखा रहे हैं, बहुत कमाल का कार्य कर लेती हैं एकाग्रता की शक्ति। और हम भी कमाल करना चाहते हैं और बाबा की प्रत्यक्षता करना चाहते हैं तो और भी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। इतनी हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति हो जो दुनिया में कोई भी हलचल हो उसका प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। इसीलिए ऋषि मुनियों को भी बताते हैं जब वो तपस्या में एकाग्र रहते थे तो कोई जंतु शेर जैसे भी सांप भी उनको कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि हमारी जो एकाग्रता की शक्ति है, जो हमारे अंदर शुभ भावना शुभ कामना की शक्ति है, वो वायुमंडल जहां जहां रहता है वहां हिंसात्मक कार्य करने वाली आत्मा भी बदल जाती है, उनके अंदर शांति, उनके अंदर भी अहिंसा की प्रवृत्ति आती जाती है। इसीलिए हमें एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। तो योग में जब हम जितना एकाग्र होते हैं उतना हम शांति की शक्ति को दुनिया में फैला सकते हैं। इसीलिए संतुष्ट आत्मा बनकर सर्व प्राप्तियां करके सभी आत्माओं को भी संतुष्ट करना है, संतुष्ट रहना है। ओम शांति।